parei de Exclusive Interviews.
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।
हमारे देश में या हमारे आसपास पूरी दुनिया भर में कई सारी बीमारियां होती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसे हम रेयर बीमारियां कहते हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं 100 में से एक या दो लोगों को ही ये बीमारियां होती हैं। ऐसे ही एक बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के लिए प्रदेश भर में अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे हैं और एक ग्रुप है इंटास फाउंडेशन। ये ग्रुप प्रदेश के अलग अलग लोगों से जुड़कर वो लोग जो हीमोफीलिया से ग्रसित है उनके लिए काम करता है और हीमोफीलिया से जुड़े जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराता है। इस फाउंडेशन के बारे में और भी अधिक और भी अच्छे से जानकारी देने के लिए और इसके साथ साथ हीमोफीलिया के बारे में बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ हैं इंटास फाउंडेशन से मुस्कान जी। तो मुस्कान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
जी धन्यवाद, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुस्कान शर्मा, प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ इंटास फाउंडेशन में। मैं 2 साल से इंटास फाउंडेशन से जुड़ी हूँ और आज ही हमारा 4th हीमोफीलिया का कैंप है जिसमें हम 40 से ज़्यादा कैंसर हीमोफीलिया के पेशेंट को मदद कर रहे हैं। हम कैंसर और हीमोफीलिया के पेशेंट को मदद करते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का पॉकेट मनी ज़ीरो हो। जो हीमोफीलिया में फैक्टर की कमी होती है वो फैक्टर 8 और 9 हम उनको प्रोवाइड कराते हैं हमारे कैंप के ज़रिए। हमारे कैंप के ज़रिए हम उनको फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ इन्फ्यूजन की ट्रेनिंग देते हैं ताकि एमरजेंसी के केस में पेशेंट अपने आप वो फैक्टर लगा के अपने आप को उस समय स्वस्थ कर। तो ये जो फैक्टर रहते हैं, एक फैक्टर का प्राइस हमारे पास 11,000 से 12,000 का है, जो या तो पेशेंट को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, बट अगर ऑप्शन नहीं है तो वो फैक्टर उनको कहीं से परचेज करना पड़ता है, बट हमारी संस्था उनको ये फैक्टर फ्री में प्रोवाइड कराती है। एक कैंप में हम कम से कम 5 से 6 लाख के फैक्टर पेशेंट्स को डोनेट करते हैं और कोशिश करते हैं कैंप लगा के कि हीमोफीलिया के प्रति, क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है, इसके प्रति लोगों को अवेयरनेस प्राप्त हो। अवेयरनेस होने के बाद हम कोशिश करते हैं कि ये बीमारी जितना अर्ली स्टेज में हो पाए, करीबन माँ के पेट में जब बच्चा है तब अगर पता चल पाए तो किसी केसेस में बहुत ज़्यादा सुविधा हम उनको प्रोवाइड करा सकते। हम फैक्टर बांटने के साथ साथ पेशेंट्स को डॉक्टर कंसल्टेशन और लैब सपोर्ट की सुविधाएं भी प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू पेशेंट का जो पॉकेट मनी है वो टोटल ज़ीरो होता है, क्योंकि हीमोफीलिया के जो पेशेंट के टेस्ट हैं वो काफ़ी महंगे होते और वो भी हमारी कंपनी पेशेंट्स के लिए बियर कर। हम आज 40 से ज़्यादा लोकेशन में इंटास फाउंडेशन की संस्था चला रहे हैं जिसमें हम करीबन 3 से 4 लाख पेशेंट की मदद कर चुके हैं और हमारा मोटिव यही है कि हम आगे और पेशेंट की मदद करते रहे। कैंसर और हीमोफीलिया जैसी बड़ी बीमारी में हम अपना हाथ अच्छे से सोशल वर्कर की तरह सोशल वर्क करके अच्छे से हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं।
तो ये तो आपने इंटास फाउंडेशन के बारे में बहुत डिटेल में हमें जानकारी दी। हम फिर से एक शुरुआत करना चाहेंगे और अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि आखिर हीमोफीलिया है क्या।
तो हीमोफीलिया, जैसा कि मैंने बताया, एक जेनेटिक बीमारी है जो कि अगर किसी को हो रही है तो बाय बर्थ हो रही है, और ये बीमारी ऐसी है कि हम इसको ब्लड डिसऑर्डर बोल सकते हैं जिसके अंदर जो पेशेंट है हीमोफीलिया का पेशेंट जो ग्रसित है इससे, उनको इंटरनली बॉडी के किसी भी पार्ट में, वेदर इट इज़ ब्रेन, हैंड या जॉइंट्स, मोस्टली ये जॉइंट्स में होती है, और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होती है और वो ब्लीडिंग तब तक नहीं रुकती जब तक हम जो फैक्टर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो फैक्टर न लग जाए, और हम किसी भी पेन किलर से वो जो पेन है वो नहीं रोक सकते। सिर्फ एक ही इलाज है फैक्टर, बट ये एक ही इलाज जिसको लगता है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको अवेयरनेस है उसके लिए फिजियोथेरेपी एकमात्र उपाय है जिसके थ्रू हम हीमोफीलिया की बीमारी को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते। बट हाँ, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हीमोफीलिया की बीमारी फिलहाल क्यूरेबल नहीं है। मतलब अगर आपने एक बच्चा हीमोफीलिया के साथ बर्थ लिया है तो उसकी डेथ भी हीमोफीलिया के साथ ही होगी, और साथ ही वो अपने जो भी उसकी जीन्स है उसमें भी हीमोफीलिया रहेगा। मोस्टली ये मदर के साइड से आती है, फीमेल को हीमोफीलिया होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं बिकॉज इट्स अ अगेन अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जो भी मेल है, अगर मेल के साइड में मामा या किसी मम्मी के परिवार में किसी को रहा है, तो ऐसे केस में जो मदर है उनको काफी ज्यादा मैं कहती हूँ अवेयर होना चाहिए इस चीज से कि अगर किसी की डेथ हीमोफीलिया से हुई है तो वो अपने बच्चे का, स्पेशली अगर उनका पहला बच्चा है, तो कोशिश करें कि टेस्ट वगैरह कराएं। बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध है जिसमें हमको पता चलता है कि प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट को हीमोफीलिया है, तो कोशिश करें कि वहां से ही पेशेंट को, ताकि उनको पूरे जीवन पर तकलीफ ना हो। क्योंकि पेशेंट, अगर मैं अगर एक एग्जांपल दूं, अगर पेशेंट को हम नॉर्मल बच्चों की कोनी भी लग जाए तो हो सकता है उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाए। तो ये काफी ऐसा बीमारी जिसमें बच्चे नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। कई केसेस में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो हम नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये है हीमोफीलिया, जिनको लोग, जिनके साथ बीत रहा है वो मानते हैं कि ये श्राप है, बट हम वही श्राप को दूर करने की आज कोशिश कर रहे हैं।
जी, तो जैसा आपने बताया कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर के अलावा कोई और भी कारण है हीमोफीलिया का?
मैम, बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में जीन में अल्टरेशन होने के कारण भी हीमोफीलिया हो सकता, पर वो बहुत कम केसेस में होता है। मोस्टली हम यही देखते हैं कि मम्मी के साइड किसी को था, मोस्टली मामा वो परिवार में किसी को था, तभी हुआ है, जेनेटिक ट्री में होने के कारण हुआ है।
तो फिर आपने ये बताया कि जेनेटिकली ये बढ़ता है, अब चीज़ ऐसी होती है कि कई बार हमारे परिवार में न्यूबॉर्न बेबीज आते हैं, तो काम इतना होता है, बच्चे का ध्यान रखने में लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि उस पर ध्यान नहीं रखते। ऐसा पॉसिबल है ना कि हीमोफीलिया के कुछ अर्ली सिम्टम्स हो?
मोस्टली केसेस में ना प्रॉब्लम यही है कि सिम्टम नहीं पता चलते हैं। अभी छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, उसको कहीं तो पेन हो रहा है, वो रो रहा है, बट जब बच्चों के दांत आते हैं ना, हम तब ये प्रॉब्लम नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि गम से एक्सेस ब्लीडिंग होती है। इसीलिए हम अपने डॉक्टर्स के ग्रुप में ना डेंटिस्ट और ऑर्थो जो डॉक्टर है उनको भी मेनली शामिल करते हैं, क्योंकि जॉइंट में ब्लीडिंग होती है तब हमको ऑर्थो की जरूरत पड़ती है, और जब गम्स में ब्लीडिंग होती है तब हमको डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो उस समय हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को अगर हीमोफीलिया है, तो एक्सेस ब्लीडिंग उसको बाहर से भी हमको पता चलता है कि हो रही है। तो ये एकमात्र सिम्टम है जो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे फिर भी हमको बता सकते हैं। छोटे बच्चों के केस में हमको यही ट्राई करना है कि पेट से ही हमको पता चले।
तो जैसे आपने कहा कि माँ के गर्भ में ही बच्चे का जो हीमोफीलिया है वो पता लगाया जा सकता है, तो क्या इसके लिए कोई टेस्ट होता है?
मैम, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। आप अगर किसी भी हेमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें, वो आपको गाइड कर सकते हैं। हेमेटोलॉजिस्ट जो है वो हम अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, और जो उसकी फीस होती है वो हम पे करते हैं। जो टेस्ट वो सजेस्ट करते हैं, जिस लैब में जो हम जिनके साथ हमने MOU साइन किया है, अगर आप उस लैब में जाते हैं तो वो टेस्ट भी आपको फ्री होता है। तो इस जरिए से आपको बिल्कुल पता चलेगा कि है या नहीं। और एक और टेस्ट है जो जेनेटिक ट्री का टेस्ट है, तो आपको ये भी पता चल सकता है कि बच्चा पैदा होने से पहले, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं भी हुए तो भी आपको ये पता चल सकता है कि आपके जीन्स में हीमोफीलिया है, तो ऐसा भी टेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट है, आप किसी भी डॉक्टर जो हीमेटोलॉजिस्ट है, जिनको हीमोफीलिया से के रिलेटेड या थैलेसीमिया कोई भी ब्लड डिसऑर्डर में काम कर रहे हो, वो आपको बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं।
जी, तो अगर मान लीजिए माँ के गर्भ में ये जानकारी होती है कि बच्चे को हीमोफीलिया है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है या किस तरीके से उसका जाता है या फिर उसे क्योर करने की कोशिश की जाती है?
मैम, पहले ये होता था कि ये तो टेस्ट थे ही नहीं, पता चलता था, तो मोस्टली केसेस में पैदा होने के बाद पता चलता था, और अगर पैदा होने के तुरंत बाद पता चला है तो मोस्टली वो बच्चों को मार दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ऐसे जीने से अच्छा है कि ना ही जी। बट अब ये होता है कि पेट के अंदर ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है बच्चे का, अगर हमको पता है कि इनके जीन्स में है, तो बच्चा जब पेट में आता है तब से ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है, ताकि उसके जीन्स में वो अल्टरेशन ना आए जिसके थ्रू उसको हीमोफीलिया हो जाए। तो ये कोशिश अभी भी जारी है, इसके ऊपर और भी रिसर्च जारी है, तो अभी भी कोशिश कंटिन्यू लोग कर रहे हैं, क्योंकि कई कई केस में ना पेशेंट को एक्सेस ब्लीडिंग, जैसे जॉइंट अगर लेग में ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेस ब्लीडिंग के कारण उनको लाइफ टाइम के लिए लकवा भी मार जाता है, पैरालिसिस होने के बाद फिर वो लाइफ टाइम वैसा ही जीते, तो इसलिए इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है, और होपफुली कि हम भी काफ़ी कुछ हीमोफीलिया के बारे में और सीख पाएँ, समझ पाएँ।
जी, तो जैसे बच्चा पैदा हुआ और शुरुआत में उसे क्योर किया गया, माँ के गर्भ में ही उसका क्योर किया गया, तो वो बच्चा जो हीमोफीलिया के साथ पैदा हुआ है, जिसका कोई क्योर नहीं किया गया है, और वो बच्चा जिसका माँ के गर्भ में ही क्योर हुआ है, इन दोनों के सिम्टम्स और जिस तरीके से उनके लक्षण होंगे, इनमें अंतर क्या हो?
तो जिसका इलाज हमने माँ के गर्भ में कर दिया है ना, उसका बहुत हद तक चांसेस है कि उसको हीमोफीलिया नहीं होगा।
अच्छा,
ठीक है, और जिसका इलाज नहीं हुआ है वो तो बाय बर्थ ही हीमोफिलिक रहेगा, वो बाय बर्थ ही होता है। जब होता है बाय बर्थ ही होता है, किसी को जल्दी पता चलता है। आप यहाँ पे भी देखेंगे हमारे कैंप में बहुत सारे बच्चे पेशेंट आए हैं, ठीक है, तो ये बाय बर्थ ही पता चल जाता है और तब से ही उनको फैक्टर लगने शुरू हो जाते हैं। और ये जो फैक्टर लगते हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग लगते हैं, जिसका जितना वेट है उसके हिसाब से उनको फैक्टर लगता है। तो न्यू बॉर्न बेबी को उसी समय से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फैक्टर देने लग जाते हैं।
तो किसी व्यक्ति को पता चला कि उनके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है या कोई कोई भी व्यक्ति है उसे हीमोफीलिया की शिकायत है, तो सबसे पहले उनका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
सबसे पहला कदम हीमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जो जातक हैं हीमोफीलिया के सबसे ज़्यादा वो होते हैं हीमेटोलॉजिस्ट, सबसे ज़्यादा सही गाइड वही कर सकते हैं। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली छत्तीसगढ़ में बहुत कम हीमेटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और जो हैं जितने हैं वो बहुत फेमस है, तो मेरे हिसाब से उनके पास जाना चाहिए। अगर किसी को हीमेटोलॉजिस्ट नहीं पता क्या होता है, हीमोफीलिया कुछ नहीं पता, तो वो एक नॉर्मल जनरल डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, देन दे कैन रिफर देम थ्रू हीमेटोलॉजिस्ट।
फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद की प्रोसेस क्या होती है और किस तरीके से उनके इलाज को शुरू किया जाता है?
तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ना कुछ टेस्ट लिखते हैं। हीमोफीलिया में भी ना परसेंटेज होता है कि उनको कितना परसेंट है, जैसे ये फिजियोथेरेपी करके वो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जिसका बढ़ा हुआ रहता है हीमोफीलिया उसको ज़्यादा फैक्टर लगते हैं, तो डॉक्टर ना धीरे धीरे डोजेस के हिसाब से ना उसको कंट्रोल करने का शुरू करता है। तो उसके पहले ये टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए। दूसरा स्टेप मेरे हिसाब से लेना चाहिए उनको कि ऐसी जो हमारे जैसी संस्था है, और भी संस्था होगी, फिलहाल छत्तीसगढ़ में तो हम ही काम कर रहे हैं, बट बाहर और भी संस्था होगी जो हीमोफीलिया में काम करती होगी, जैसे थैलेसीमिया में भी बहुत सारी संस्था काम करती है, तो वैसी संस्था को रीच आउट करना चाहिए ताकि उनको एक गाइडेंस मिले, क्योंकि गुमराह करने वाले बहुत लोग हैं और गाइड करने वाले कम लोग हैं, तो इसीलिए उनको ऐसी संस्था के पास रीच आउट करना चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स का यूज करना चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो वो स्कीम इनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है फाइल्स। एक फैक्टर जैसे कि मैंने बताया 11 से 12 हज़ार है, दे कैन नॉट अफोर्ड, और हर टाइम गवर्नमेंट के पास अवेलेबल भी नहीं है, तो ऐसे टाइम में ये संस्था उनको कंटिन्यू फैक्टर प्रोवाइड करा सकती है या असिस्टेंट, जैसा भी उनको हेल्प चाहिए।
तो जैसा आपने कहा कि ये फैक्टर्स जो हैं वो हीमोफीलिया के पेशेंट्स को लगते हैं, तो कितने पीरियड्स में ये जो फैक्टर्स हैं ये लगते हैं? महीने, हर महीने लगता है कि साल में दो बार तीन बार, इसकी अवधि क्या होती है?
टोटली ना पेशेंट की कंडीशन में डिपेंड करता है, किसी को हर वीक लगता है, किसी को हर मंथ लगता है, किसी को हर 15 दिन में लगता है, वो टोटल पेशेंट की कंडीशन में क्या होता है ना, इनको हीमोफीलिया होता है तो ये मैंने जैसे बताया कि कहीं भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, स्कूल नहीं जा सकते, तो मोस्टली घर में और बेड में ही रहते हैं, तो ये कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग, स्विमिंग और फिजियोथेरेपी। अगर ये सब करें ना तो इनको शायद फैक्टर की ज़रूरत भी ना पड़े, या शायद 6 महीने में एक बार फैक्टर लग रहे हैं। ऐसे मैंने देखे हैं 3-4 केसेस अपने ही कैंप के अंदर, जिन्होंने फिजियोथेरेपी और स्विमिंग के जरिए बहुत हद तक हीमोफीलिया को कंट्रोल किया और अब उनको फैक्टर लगते भी नहीं है। कभी अगर रेयर ऑफ द रेयर केसेस में उनको फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है।
तो जैसे आप जो इंटास फाउंडेशन है आपका, ये लगातार हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए और उनके हित के लिए काम कर रहा है, तो हमारे श्रोताओं में से अगर कोई भी आपके इस इंटास फाउंडेशन तक पहुंचना चाहेगा तो वो किस तरह से पहुंच सकता है?
मैम, हम लोग अभी हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, इंस्टाग्राम में है, हम लोग फेसबुक में है, लिंक्डइन में है, उसके अलावा हमारी intasfoundation.org की वेबसाइट है, जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कैंसर से रिलेटेड, हीमोफीलिया से रिलेटेड, हम और भी जो एरिया में काम करते हैं, हम गवर्नमेंट के ब्लड बैंक के साथ भी काम करते हैं, हमारे सारे सेंटर का डिटेल, जो 40 हमारी लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में, वो डिटेल, पेशेंट के टेस्टिमोनियल, डॉक्टर्स के टेस्टिमोनियल, सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। आप उसके थ्रू भी रीच आउट करते हैं, और स्पेशली अगर किसी को छत्तीसगढ़ में रीच आउट करना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, आप उसमें कॉल करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो नंबर इस प्रकार है 7984083929। इसके अलावा हमारा रायपुर अवंती विहार के अंदर जीवन विहार कॉलोनी में ऑफिस है, जिसमें हमारा सेंटर भी है, जिसमें हम कैंसर के पेशेंट को रखते भी हैं, वहाँ पे भी आप कभी भी, वो 24 घंटे खुला रहता है, 365 डेज वो ओपन है नीडी पेशेंट के लिए। बस एक ही क्राइटेरिया है, हम हेल्प करते हैं नीडी पेशेंट, तो आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं।
तो हीमोफीलिया और अपने इंटास फाउंडेशन के बारे में आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे उन श्रोता साथियों बहुत ज़्यादा काम आएंगे जो हीमोफीलिया से जुड़े हुए, हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों से जुड़े हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं एक मदद की राह तलाश रहे होंगे। हमसे बात करने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी विस्तार से जानकारी देने के लिए मुस्कान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी थैंक यू मैम।
हर पारी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पण।